में होते हैं, जो मीठी नींद से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, जो लजीज गज़ाएँ खाते हैं, उनकी रूह कमज़ोर होती है। सो ये एक रूह का और बदन का रिश्ता, अगर रूह अजीम है तो बदन कमज़ोर है, अगर बदन मजबूत है तो रूह कमज़ोर है। ये अपनी अपना चॉइस, अपना अपना अज़म, अपना अपना इरादा होता है। शहीद ने यहाँ एक फ़ारसी का शेर कहा और उसका जो तर्जमा मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, वो फरमाते हैं कि बुलबुल ने बाग की राह ली, उल्लू वीराने को चला गया। बुलबुल ने बाग की राह ली, उल्लू ने वीराने को चला गया, जिसका जितना अजम, जिसका जितना इरादा, उसने वहाँ घर बना लिया। तो ये इंसान का जिस कदर अजम है, जिस कदर बुलंद इरादा है, ये उसकी रूह की एक बुजुर्गी को जाहिर करता है कि उसकी रूह मजबूत है। ये शहीद यहाँ तीन मुख्तलफ बयान की हैं बातें कि कुछ लोग इलम की राह में बड़े बाहिम्मत, बड़े बाहौसला होते हैं, उनमें अगर हम इलम की बात करें तो कुछ थोड़े से इलम पर इक्तफा करते हैं, जस्ट लाइक ग्रेड 12 या इंटरमीडिएट पे, वो अपनी उनकी अज़म इतना ही होता है कि वो इतनी तलीम पे मुतमिन हो जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो सारी इलम, सारी उम्र इलम के हसूल में लगे रहते हैं। यहाँ पे शहीद ने एक मरूफ स्कॉलर, फलसफी, रियाजीदान, माशरा शनास अल बैरूनी का ज़िक्र किया कि अल बैरूनी एक बहुत बड़े पाए के आलम थे। कुछ लोग तो यह कहते हैं कि वो बू अली सीना से कुछ पहलुओं में उनसे भी बरतर थे, कुछ में बू अली सीना को फौकियत थी। बहरहाल इनको, बू अली सीना को एक शख्स सुल्तान महमूद ने बुलाया, उसको गजनवी कहते हैं, और ये उनके पास चले गए। बाद अज़ां उसने जब हिंदुस्तान फतह किया तो ये अल बैरूनी भी हिंदुस्तान उनके साथ तशरीफ ले गए। जब हिंदुस्तान में जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ तो इलम और मालूमात के खजाइन छुपे हुए हैं, लेकिन इस बढ़ाके की उम्र में वो लैंग्वेज जिसमें वो इलम और ख़जाने हैं मालूमात के, वो है संस्कृत, और वो इस तक कैसे पहुँचे? उन्होंने अपना हिम्मत, अज़म और हौसले से शुरू किया, उस नई ज़बान को याद किया, उस पर अबूर हासिल किया, फिर वो उन अलूम तक पहुँचे। और बाद में कहते हैं कि अल बैरूनी ने एक किताब लिखी थी जिसको हिंद शिनासी कहते हैं, और जो एक बहुत बड़ी मोतबिर किताब है। जब ये अल बैरूनी का वक्त वफात करीब आया, इंतज़ार की हालत में थे, चूँकि आलम शख्स थे, दोस्त भी आलम थे, इस बीमारी की हालत में एक फकीह इनकी इयादत के लिए तशरीफ लाते हैं। जब अल बैरूनी उस फकीह को देखते हैं तो होश में आते हैं, कुछ वरासत का कोई मसला पूछते हैं। तो वो कहते हैं, फकीह इस हालत में आप ये दरियाफ्त कर रहे हैं? तो अल बैरूनी फरमाते हैं कि मैं ना जानता हूँ और मर जाऊँ ये बेहतर है, या मैं जानते हुए मर जाऊँ ये बेहतर है? तो वो फकीह फरमाते हैं कि जानते हुए इस दुनिया से रुखसत होना यकीनन अफजल है। तो ये एक उनका अज़म और हौसला, जैसे हम कहते हैं कि उत्तिल्वुल इल्म मिनल महद इलल लहद, के पंघूड़े से लेकर लहद तक इल्म को हासिल करो, ये एक इंसान इंसान का एक अज़म होता है और उसकी रूह की बुजुर्गी को जाहिर करता है। सलावात पढ़िए। कुछ लोगों में मालो दौलत जमा करने का अज़म होता है, और ये भी सब में यकसा नहीं होता। कुछ लोग थोड़े से माल पे इक्तफा करते हैं, जस्ट उनको एक पेट भरने की रोटी मिल जाए, उनको नौकरी करनी पड़ जाए, मांग कर खाना पड़ जाए, ज़िल्लत से खाना पड़ जाए, वो कबूल कर लेते हैं। कुछ इस किस्म के भी लोग हैं। कुछ यही मालो दौलत में ऐसे भी होते हैं जिनकी हवस और ख्वाहिश नहीं बढ़ती, और इसमें वो मेहनत करते रहते हैं, और ये एक کبھی بھی وہ پورے نہیں ہوتے، بہرحال وہ لگے رہتے ہیں عزم اور حوصلے کے ساتھ۔ شہید یہاں فرماتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کماتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ان لوگوں سے افضل ہیں جو ہمت نہیں کرتے اور ان سے ہر وقت طالب رہتے ہیں کہ ان کو کچھ عطا کر دیں۔ تو یہ ایک مال و دولت حاصل کرنے کے لیے ایک عزم اور حوصلہ اور ہمت، یہ بھی ایک روح کی بزرگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسری، ایک حصول جا شہرت اور خود پسندی کے لیے، اس کے لیے بھی جو ایک عزم اور ارادے کے ساتھ کچھ لوگ کام کرتے ہیں۔ اس میں شہید نے دو مثالیں دی ہیں، اس میں ایک سکندر کی دی ہے کہ وہ ایک بہت باعزم ہمت والا حوصلے والا انسان تھا، اور لیکن اس کا یہ جو حوصلہ اور اس کی یہ جو ہمت تھی اس کو یہ اس کو سکون نہ دے سکی، پوری دنیا پہ وہ نہ ہو سکا، لیکن وہ باہمت با حوصلہ انسان تھا۔ اسی طرح ایک نادر شاہ کا ذکر کیا کہ وہ جو ایک ایران کے تھے، بہت وہ جسٹ اس کی ہمت کی بات کریں، اس کے عزم کی بات کریں کہ وہ ایک بہت پر عزم انسان تھا۔ نو ڈاؤٹ وہ بڑا ظالم تھا، کھوپڑیوں کے ڈھیر لگا دیتا تھا، آنکھیں نکال دیتا تھا۔ ایک وقت ذکر شہید نے ایک واقعہ یہاں پہ نقل فرمایا ہے، شہید فرماتے ہیں، صلوات پڑھیے، کہ ایک دفعہ ایک نادر شاہ کا ایک سرائے میں سے گزر ہو رہا تھا کہ اس میں رکا، دروازے کو نوک کیا، وہ اندر سے شخص آیا، اس نے پوچھا کہ نادر شاہ نے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے، کہتا میرے پاس کچھ انڈے ہیں، کہتا سارے بنا دو، کچھ روٹیاں مل لاؤ۔ اس نے کھانا شانا کھایا وہاں سے، اور پھر وہ کہنے لگا کہ میں نادر شاہ ہوں۔ جب اس نے یہ سنا اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، یہ نادر شاہ ہے؟ تو وہ کہتا اچھا میں وہ جا رہا ہوں فلاں جگہ پہ، میری فوج پیچھے آ رہی ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس قدر قوی تھا، اس قدر مضبوط تھا، اپنی فوج سے بھی 2 گھنٹے پہلے چلتا تھا۔ تو ایک وہ ایک بہاؤ ہمت اور حوصلہ، لیکن اس کی یہ روح کی جو عظمت ہے یا بزرگی ہے، اس سے جو شاخیں نکلی ہیں وہ جا طلبی کی، شہرت طلبی کی، خود پسندی کی، اس دنیا پہ ایک کنٹرول حاصل کرنے کی، تو یہ ایک خواہشات اس کی تھی۔ تو صلوات پڑھیے آپ، ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں جو با عظمت ہوتے ہیں، با حوصلہ ہوتے ہیں، ان کی روح کو عظمت ہوتی ہے، لیکن وہ خود پسندی کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالتے ہیں۔ اس میں وہ تقابل نہیں کرتے کہ میرے پاس دولت ہے تو اس سے زیادہ ہو، میری شہرت ہے تو اس سے زیادہ ہو، وہ اپنے آپ میں ایک احساس عزت پاتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں آپ کو ایک شہید حسینی، عارف الحسینی کا ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ ان کی شہادت کے ایام بھی ہیں۔ وہ بہت مصروف ان کی زندگی ہوتی تھی، تو ایک اپنی والدہ کو ملنے اپنے گھر جا رہے تھے، ان کا گھر پارا چنار سے کوئی 8-10 کلومیٹر کے فاصلے میں تھا۔ درمیان میں ایک بہت بڑی ڈرین تھی، اور اس ڈرین میں پہاڑوں سے پانی سارا آتا تھا، اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو اس قدر وہ سیلاب اور طغیانی تھی کہ ادھر کی ٹریفک ادھر کی ہوئی تھی، ادھر کی ادھر کی ہوئی تھی۔ وہ ان کے پاس وقت بھی نہیں تھا، انہوں نے واپس بھی کسی پروگرام کے لیے واپس جانا تھا، ادھر والدہ کی ملاقات کے لیے آئے تھے۔ اب اپنے ڈرائیور سے کہتے ہیں بسم اللہ کر کے گاڑی کو اب چلائے۔ اب وہ یہ ڈرائیور یہ واقعہ نقل کرتا ہے، میں نے گاڑی پانی میں ڈالی ہے، اب مجھے نہیں پتا، گاڑی دوسرے سرے پہ پہنچی ہے تو مجھے پتا چلا کہ گاڑی اب دوسرے کنارے پہ ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا یہ کوئی بزرگ ہے، یہ شخصیت ہے، لوگ دوڑے ان کی طرف، زیارت کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ شہید کہتے ہیں ڈرائیور کو گاڑی جلدی سے بھگاؤ، کیونکہ وہ آزاد تھے، شہرت کے غلام نہیں تھے۔ تو یہ ایک آزادی ہوتی ہے انسان کی جو مانوی طور پر آزاد ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے، جن لوگوں کی روح باعظمت ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں احساس عظمت پاتے ہیں، ایک بڑائی کا احساس پاتے ہیں، وہ کم تر چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ، एक पस्त चीज़ है, ये मुझसे बहुत ही पस्त है, मैं इससे बहुत बुलंद हूँ, वो झूठ बोलना वो पसंद ही नहीं करते। ये है वो जिनकी रूह आज़ाद होती है। इसमें एक शहीद ने एक वाक़या जिक्र किया है कि इटली के एक आमिर का, जो मसूलिनी उसका नाम है, कि वो कहता, उसका एक ये कंसेप्ट था, उसका ये तसव्वुर था कि बेड़ों की तरह 100 साल जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि 1 साल इंसान शेर की तरह जिंदगी गुजार ले, और वो इसी फार्मूले पे अमल करता था। उसने एक शख्स को अपने साथ रखा हुआ था कि उसको वो पैसे भी देता था कि मेरा ये फार्मूला किसी तक पहुंच ना पाए, इसलिए कि अगर बाकी लोगों को पता चल गया कि वो भी शेर बनना पसंद करेंगे, और जब बेड़ा कोई नहीं होगी तो वो क्या खाएगा, शेर किस पे दरिंदगी दिखाएगा। ये वो बुजुर्ग, उसकी रूह थी उसमें बुजुर्गवारी नहीं थी, उसमें इंसाफ नहीं था। तो ये एक फर्क होता है कि रूह बुजुर्गी उसमें थी, उसमें ताकत थी, हिम्मत थी, हौसला था, लेकिन उसकी रूह बुजुर्गवार नहीं थी। बुजुर्गवार ये चाहता है कि सब के सब शेर बन जाए, सिरे से ही दरिंदगी ना हो, यहाँ इंसाफ हो, और इसमें हर इंसान की जो है करामत का वो उसका ख्याल किया जाए। यहाँ पे शहीद ने एक रसूल मकबूल से एक जो हदीस है उसको बयान फरमाया है कि कहते हैं कि अक्सर तर्जमा ये किया जाता है कि मैं तुम मकारम अखलाक की, अच्छे अखलाक की तकमील के लिए मबूस किया गया हूँ। कहते हैं कि ये ऐसी बात नहीं है, अखलाक जो भी होता है, अगर कोई मज़हब, अगर कोई मकतब पस्ती की तालीम देता है तो वो कहता है यही अच्छा अखलाक है, अगर वो कोई मसलक ये कहता है कि इंसान को अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, कमज़ोरी गुनाह है, कमज़ोरों को होना ही नहीं चाहिए, वो कहते हैं ये अखलाक है। तो ये जो कहते हैं कि अखलाक की तकमील करने में आया हूँ, ये ऐसा नहीं है। इसी हदीस में कहते हैं कि अखलाक की डेफिनेशन भी दी गई है, कहते हैं कि मैं मुकार में अखलाक की तकमील करने आया हूँ, करामत वाले अखलाक की तकमील, जिसमें इंसान अपनी करामत, अपनी इज्जत, अपनी जो है एहसास अजमत को जो है वो महसूस करे, मैं ऐसे अखलाक की तकमील करने आया हूँ। सलवात पढ़िएगा। यहाँ पे आगे चल के मौला अली अलैहिस्सलाम का एक वो फरमान और नसीहत बयान फरमाते हैं कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंदान से की, और फरमाया ऐ बेटो अपनी रूह को बुजुर्गवार रखो और इसकी रूह की इज्जत करो, इसको पस्त अमल से बाला तर समझो, और अपनी रूह की जो है वो हफाजत करो। शहीद यहाँ पे एक मिसाल देते हैं कि एक पेंटिंग, बहुत खूबसूरत पेंटिंग अगर कहीं पड़ी हो, उस पर कोई दाग धब्बा लग जाए तो उठ के वो जो साथ है वो उसको फौरन रुमाल से साफ कर दे, और पूछने वाला अगर कोई पूछे कि यार आपने इसको ऐसा क्यों किया, तो खुद ऐसे जवाब दें कि ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत है, इस पर दाग अच्छा लगता ही नहीं है। तो इसी तरह जो एक मोमिन है, जो इसकी जो रूह है, जो एक मुकर्रम है, और उसकी जो रूह बाअज़मत है, उस पर इस किस्म का छोटा दाग मुनासिब लगता ही नहीं है, और मोमिन ऐसे दाग लगने ही नहीं देते क्योंकि वो अपने आप को आज़ाद फील करते हैं। सलवात पढ़िए। सफीन के वक़्त जब मौला अली अपने लश्कर के साथ गए, उधर से मुआविया का लश्कर आया, मौला अली अलैहिस्सलाम का ये हतमन मकसद नहीं था कि जंग हो, चाहते थे कि मैं कोई खतूत लिखे जाएं, हम मिल बैठे, कोई तबादला क्या करें, इसका कोई हल निकला है, मुसलमानों की तलवारें एक दूसरे के साथ न चलें, ये उनकी ख्वाहिश थी। लेकिन जब दूसरी तरफ से वो आते हैं, और उन्होंने आते ही वो पानी पर कब्ज़ा कर लिया, तो इधर से भी ये भी मजबूर थे कि अगर हमें 2-3 दिन के लिए पानी न मिला तो हम यहाँ तो नहीं रह सकेंगे, बच नहीं सकेंगे, जंग के अलावा और कोई चारा न रहा। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से, अपने लश्कर से जो फरमाया, मौलाली फरमाते हैं कि अगर मर कर फतह हासिल कर लें, अगर मर कर फतह हासिल कर लें तो ये समझे कि आप जिंदा हैं, और दुश्मन से मगलूब होकर जिंदा रहें तो समझे आप मुर्दा हैं। ये मौला अली अलैहिस्सलाम अपने असहाब में, अपने लश्कर में एक इज्जत और उनकी नफ्स से इज्जत और करामत की जो है वो तरवीज कर रहे थे, इसको उनमें वो डाल रहे थे। इसी तरह फरमाते हैं कि एक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और उसने अपना जिक्र करना शुरू कर दिया कि मौला मेरे हालात ठीक नहीं हैं, मुझे माली परेशानी है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अभी वो ये बातें कर ही रहा था, इमाम ने किसी और अपने सहाबी से कहा जाओ इसके लिए कुछ माल लेके आओ। अब वो शख्स कहता है कि मौला मैंने आपसे ये कुछ मांगने के लिए नहीं कहा था। मौला फरमाते हैं कि मैंने कब कहा है कि तूने मांगा है, लेकिन मैं आपको एक नसीहत करता हूँ कि अपनी परेशानी का, अपने दुख का किसी से अजहार ना करें, इसलिए कि जब आप किसी के सामने हाथ फैलाएंगे तो आप हकीर समझे जाएंगे, और इस्लाम नहीं चाहता कि एक मोमिन दूसरे मोमिन को हकीर समझे। सलावत पढ़िएगा। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी कुछ इस बारे में अरशादात हैं। यहाँ शहीद ने एक ख़ास बात का जिक्र किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अरशादात हमें बहुत कम मिलते हैं। इसकी वजह उस वक़्त का एक मखसूस माहौल था कि लोगों को इमाम तक रसाई नहीं थी। अगर कोई शख्स इमाम तक पहुँच जाता तो वो उसमें आगे बयान करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। इस वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अरशादात हम तक बहुत कम पहुँचे हैं। जो खुतबा मक्का में इमाम ने फरमाया कि मक्का में जब थे, फरमाया इमाम ने कि मेरी रूह इजाज़त नहीं देती कि फासद हालात देखूं और ज़िंदा रहूं, ज़ालिमों के साथ ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए दुश्वार है। इमाम को रास्ते में पस्त हौसला रखने वाले अफराद भी मिले, बताते रहे कि हालात बड़े ख़राब हैं, आप आगे न जाएं, लेकिन इमाम पुर अज़म थे, पुर हौसला थे, वो आगे बढ़े। जब इमाम जंग लड़ चुके, हमले कर चुके, गैर ममूली थक चुके, तीरों से ज़ख्मी ज़मीन पर गिर चुके, बहुत सा खून बह चुका, सिर्फ तलवार के सहारे थोड़ा सा उठे हैं, देखा कि कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं खयाम की तरफ जाने की। इमाम उठे, कहते हैं ए लोगो, ए खुद फरोख्ता लोगो, ए आले अबी सुफयान के पैरो, तुम मुसलमान न सही, इंसान तो बनो। ये जो तुम काम करने लगे हो इसमें इंसानियत भी नहीं है, इंसानियत तुम खुदा और क़यामत पे यकीन नहीं रखते तो शराफत के दायरे में तो रहो। तो ये है कि एक जो इंसान गिर जाए तो कितना गिर जाता है, रूह को कितना गिरा ले, और अगर जो बाज़मत हो तो उसके रास्ते में जो भी रुकावट आए वो अपने हौसले से, अज़म से, अपनी रूह की बुजुर्गी से उसको सर कर लेता है। बाकी तफसीलात के लिए मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। और